तो ये जो अनुवेद ने बताए हुए ऐसे तीन साधन हैं, उनको संक्षेप में दो में बताया गया, दो रूप से। एक तो ज्ञान रूपी साधन जिसे प्रथम मंत्र में बताया, और कर्म एवं उपासना, ये इन दोनों को एक मान करके कर्मनिष्ठा नाम से कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह इस मंत्र से बताया गया। अनुष्ठेय साधन जिसका अनुष्ठान किया जाता है, कर्म है बाह्य हस्तादि इंद्रियों से निर्वर्त्य शरीर और इंद्रियों से जिसको आप करते हैं उसे तो कर्म कहा जाता है, और उपासना भी प्रयत्न से होती है, लेकिन उसमें मन की प्रधानता है। जिसमें मन प्रधान न हो, शरीर और इंद्रियों की प्रधानता हो, ऐसा जो आपके द्वारा किया जा रहा कर्म उसे तो कहा जाता है कर्म, और शरीर इंद्रियों की जिसमें प्रधानता नहीं है, मन से जिसको किया जाता है वो है उपासना चिंतन, लेकिन वो भी मानस कर्म ही है, इसलिए अनुष्ठेय होने के कारण उसका भी अनुष्ठान होता है, उपासना का भी, इसलिए उसे भी यहाँ पर कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस मंत्र में उपक्रम में एक प्रकार से कर्म शब्द से ही लिया गया है। अब ये जो नवम मंत्र है ईशावास्योपनिषद का, जहां से एक प्रकार से अलग दो प्रकरण हो रहे हैं, इन्हीं ईशावास्योपनिषद के मंत्रों की व्याख्या है बृहदारण्यक उपनिषद, दोनों भी यजुर्वेद की हैं। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के मंत्र भाग की है, बृहदारण्यक उपनिषद ब्राह्मण भाग की है, मंत्रों का व्याख्यान होता है ब्राह्मण। तो इन दो मंत्रों की जो ईशावास्य में प्रथम मंत्र और कुर्वन्नेवेह कर्माणि ये द्वितीय मंत्र, इन दो मंत्रों ने संक्षेप में जो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा बताई, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में दो सूत्र आते हैं अधिकारी भेद से। एक ज्ञान निष्ठा का सूत्र है आत्मा इत्येव उपासित, ये ईशावास्योपनिषद की व्याख्या करने के लिए एक सूत्रात्मक वाक्य है, और यहां से फिर व्याख्यान शुरू हो जाता है। उसमें कई एक ब्राह्मणों के द्वारा ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन है, तो कई एक ब्राह्मणों से निरूपण है कर्म निष्ठा का, लेकिन ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा के अधिकारी को अलग अलग दिखाने के लिए वहां पर अलग अलग दो प्रकरण बताए हैं। जाया में शात, ऐसे कामना करने वाला, संसार के अंदर की कामना करने वाला जो मनुष्य है उसे कहा जाता है कामयमान, और जो कामयमान मनुष्य है यानी संसार के अंदर की ही इस लोक की वस्तुएं या परलोक की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, रूपादि विषयों की ही अनुभूति जिसके जीवन का उद्देश्य है वो है कामयमान, उसे कहा गया कर्म का अधिकारी। उसके अंदर पुत्रेशना है, उसके अंदर वित्तेशना है, जिसके अंदर लोकेशना है। ये जो पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, इन तीनों येषणाओं से युक्त जो मनुष्य है उसे तो कहा गया कर्मनिष्ठा का अधिकारी वहां पर, और जिसके अंदर से यह पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना निवृत्त हो गई है उसे कहा गया है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, आत्मा इत्येव उपासित इस सूत्र का अधिकारी। इस प्रकार ये दो भेद, येष्णात्रय से रहित चित्त वाला मनुष्य और येष्णात्रय से युक्त चित्त वाला मनुष्य इन दो को लेकर के किया गया। उसमें से जिसके अंदर अभी येष्णात्रय विद्यमान है वह कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस मंत्र से बताई गई कर्मनिष्ठा का अधिकारी है। और इसी की व्याख्या करने के लिए ये जो ईशावास्योपनिषद इस मंत्र का इस उपनिषद का नवम मंत्र है, यहां से एक अलग प्रकरण शुरू हो रहा है जिसे कर्म उपासना का प्रतिपाद्य प्रकरण कहा जाता है। और इसमें यद्यपि वेद ने केवल कर्म का भी वेद विहित केवल कर्म का भी स्वतंत्र फल बताया है, उपासना का भी स्वतंत्र फल बताया है। वेद में कर्मणा पितृलोक एक वाक्य आता है, यह बताता है कि मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का यदि अनुष्ठान करता है, शास्त्र ने बताए हुए केवल पुण्य कर्म करता है, उपासना नहीं करता, उससे उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृलोक है स्वर्गलोक। और विद्या देवलोक ये वाक्य बताता है, विद्या यानी उपासना, उपासना का अनुष्ठान करने वाले को प्राप्त होता है ब्रह्मलोक। केवल उपासना या कर्म के साथ उपासना करने वाला देवलोक को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक को, और केवल कर्म करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इसलिए इनका स्वतंत्र फल बताने के कारण त्याग कर्म को छोड़ने में, कर्म त्याग करने में तो शास्त्र का अभिप्राय नहीं है, कर्माधिकारी कर्म छोड़ दें ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन तब भी आप यहां पर देखेंगे तो नवम मंत्र में ईशावास्योपनिषद के केवल कर्म के और केवल उपासना के अनुष्ठान की निंदा हो रही है। इसलिए निंदा हो रही है कि जैसे पहले तृतीय मंत्र से अज्ञानी की निंदा कर दी थी, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनुजनः। आत्महन जन कहा जाता है अज्ञानी को, और अज्ञानी की निंदा कर दी कि वे असुरों के योग्य लोकों को प्राप्त करते हैं, जहां पर कोई उपाय मोक्ष का नहीं हो पाता ऐसे योनि को प्राप्त कर लेते हैं, भोग योनि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कह करके अज्ञानी की निंदा कर दी थी। क्यों? कहते हैं कि नहीं निंदा निंदेश्य निंदार्था अपितु विधेय स्तुत्यर्था। ऐसा एक नियम होता है कि जिसकी निंदा की जाती है उसमें दोष दिखाना शास्त्र का उद्देश्य नहीं है, अपितु विधेय अर्थ की प्रशंसा। वहां ज्ञान का प्रकरण था, ईशावास्यम इत्यादि से बताई गई ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त करना था, ज्ञान रूपी साधन में ज्ञान के अधिकारी को, तो अज्ञान की निंदा कर दी। अज्ञान की निंदा का अभिप्राय है ज्ञान का महत्व ज्ञान के अधिकारी की बुद्धि में बैठ जाए। ऐसे ईशावास्योपनिषद के नवम मंत्र से जो एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है उस प्रकरण का प्रतिपाद्य है कि अधिकारी मनुष्य कर्म और उपासना इन दोनों को साथ साथ कर ले, कर्म उपासना का समुच्चय मनुष्य के द्वारा कराना, साथ साथ कर्म और उपासना का अनुष्ठान कराना वेद का उद्देश्य है। ये दोनों साधन एक साथ हो सकते हैं, मन से उपासना और उपास्य का मन से चिंतन, शरीर और इंद्रियों से कर्तव्य कर्म का निर्वहन, ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा, माम अनुस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करो मन से और युद्ध करो। अर्जुन का कर्तव्य कर्म था युद्ध, ऐसे अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को भगवान कह रहे हैं कि क्या करो, कि अपना कर्तव्य मन से उपासना करो और शरीर इंद्रियों से कर्तव्य कर्म करो। इसी ईशावास्योपनिषद के नव मंत्र से शुरू होने वाले प्रकरण का प्रतिपाद्य जो कर्म उपासना का समुच्चय है, उसी को एक प्रकार से भगवान गीता में माम अनुस्मर युद्धच इससे बता रहे हैं, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मतलब कर्म और उपासना साथ साथ करो। इसी के लिए यहाँ पर नवम मंत्र में प्रथम केवल कर्म की और केवल उपासना की निंदा श्रुति कर रही है, वेद कर रहा है। नवम मंत्र को देखिए, नवम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आप लोग, जिनके पास पुस्तक है वो देख करके उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं। अन्नन्तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो ये उ विद्यायां रताः। तो इस मंत्र में केवल कर्मानुष्ठान की और केवल उपासना की निंदा की जा रही है। केवल कर्मानुष्ठान करने वाले को कहा जा रहा है कि अंधन्तमक प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। इस वाक्य में अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म। अविद्या शब्द का अर्थ कई होते हैं, अविद्या शब्द के अर्थ, अविद्या का अर्थ अज्ञान भी होता है, अविद्या का अर्थ भ्रम भी होता है, लेकिन यहां पर अविद्या का अर्थ है कर्म। और उपासते का अर्थ है अनुतिष्ठन्ति, उपासना को छोड़ करके केवल कर्म का ही अनुष्ठान करने में जो लगे हुए हैं, केवल कर्मी हैं। ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है, उस कर्मानुष्ठान के रूप से फलस्वरूप क्या प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं अंधन तमह प्रविशन्ति, का मतलब प्रविशन्ति का अर्थ है प्राप्तनुवन्ति, प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, तो अंधन तमह, तमह का अर्थ है अंधकार और अंधकार से घना, अंधन तमह का अर्थ है एक प्रकार से घने अंधकार को प्राप्त करते हैं, और यहां घना अंधकार है, अज्ञान को भी अंधकार कहा जाता है। ये बाह्य भौतिक अंधकार नहीं है रात्रि में होने वाला, यहां आध्यात्मिक अंधकार है अज्ञान। और केवल अज्ञान मात्र हो तो एक सामान्य अंधकार है, और घना अंधकार क्या है, तो घने अंधकार के विषय में कहा जाता है कि अज्ञान भी हो और अज्ञान का कार्य अनात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्माभिमान भी हो, और ऐसा आत्माभिमान की जो एक क्षण के लिए भी बुद्धि को छोड़ करके नहीं रह रहा है, तो अज्ञान भी हो और अज्ञान का कार्य 84 लाख प्रकार की योनि में से किसी भी योनि में आत्माभिमान हो, तो इसे कहा जाता है अंधन तमह, यानी घोर अंधकार, घना अज्ञान रूपी अंधकार, और उसे ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके क्या कर रहे हैं कि अपने आप को मनुष्य ही समझ रहे हैं, और मनुष्य समझ करके ये कह रहा शास्त्र ने बताए हुए कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि यहाँ पर हम अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करेंगे और मनुष्य शरीर को छोड़ करके स्वर्ग लोक में जा करके वहाँ के दिव्य विषयों का उपभोग करेंगे। ये ध्यान में रख करके जो केवल कर्म का फल भोगने के उद्देश्य से कर्मानुष्ठान में लगे हुए हैं, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये अविद्याम उपासते इस शब्द से। ऐसे मनुष्य केवल परलोक के शब्दादि विषयों का उपभोग करने के उद्देश्य से लगे हैं कर्म के अनुष्ठान में, तो उनका शरीर छूट जाता है जब, तो वे घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं। का मतलब देवादि शरीर में उनका आत्माभिमान हो जाता है। मनुष्य शरीर तो छूट गया और स्वर्ग में गए और वहां पर स्वर्गीय भोग में लिप्त हो गए, लिपायमान हो गए, और फिर स्वर्गीय भोग भोगते भोगते उनको पता भी नहीं चलता कि कब हमारा पुण्य कर्म क्षीण हो गया। और जैसे ही फिर पुण्य कर्म क्षीण होता है तो वहां से नीचे गिराए जाते हैं और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर यहां आना पड़ता है। इसलिए यहां पर अंधन तमस शब्द से स्वर्गीय शरीर आदि को भी कहा जा रहा है कि अंधन तमक प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले वो मनुष्य शरीर को छोड़ करके देवादि शरीर को प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान को और दृढ़ कर रहे हैं। अज्ञान का कार्य देवादि शरीर में आत्माभिमान करके उनका अज्ञान और दृढ़ होता जा रहा है, पुष्ट होता जा रहा है। ये एक प्रकार से अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, इससे केवल कर्मानुष्ठान की निंदा कर दी। तो किसी ने सोचा यदि केवल कर्मानुष्ठान इस प्रकार घोर अंधकार को ही प्राप्त करा रहा है, का मतलब अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य भ्रांति को बढ़ा रहा है, तो कर्म को छोड़ दिया जाए और उपासना में प्रवृत्त हुआ जाए, उपासना का अनुष्ठान किया जाए। तो ऐसा निश्चय करके जो कर्म को छोड़ते हैं और केवल उपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि ततो भूय इवते तमो ये वो विद्यायाम रताहा। यहां विद्या शब्द का अर्थ है उपासना, और उपासना में ही जो अभिरत है, विद्यायाम रता का अर्थ है, का मतलब कर्म को छोड़ दिए और केवल उपासना का अनुष्ठान जो कर रहे हैं, उनको तो क्या होता है, तो कहते हैं ततः भूय इव। ततः का अर्थ है केवल कर्मानुष्ठान से प्राप्त होने वाला जो अंधकार, उस अंधकार से भी भूय यानी अधिकतर ही अंधकार की प्राप्ति होती है, तम की प्राप्ति होती है। का मतलब वे केवल उपासना करके ब्रह्मलोक के भोग के लिए मात्र ब्रह्मलोक में जाएंगे तो क्या होगा, कि वहां पर भी ब्रह्मलोक के नागरिक रूपी शरीर में उनका आत्माभिमान बढ़ेगा और वहां पर ब्रह्मलोक का भोग मात्र भोगते रह करके जब ये कल्प समाप्त होगा तो पुनः आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन के अनुसार कल्पांतर में उनको भी वापस यहाँ पर आना ही पड़ेगा। का मतलब केवल कर्म का अनुष्ठान करने से भी और केवल उपासना का अनुष्ठान करने से भी क्या हो रहा है कि अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए श्रुति कहती है कि केवल उपासना भी और केवल कर्म भी न करें। एक एक के अनुष्ठान की तो निंदा कर दी, अब इसका अर्थ एक एक का भी अनुष्ठान न करे और दोनों को भी छोड़ दे ऐसा नहीं। तो इसका अर्थ है कि दोनों का समुच्चय कर लें, कर्म और उपासना दोनों साथ साथ करते जाएं, जिसे भगवान ने माम अनुस्मर और युद्ध च इन शब्दों से कहा। इसलिए दसवें मंत्र में समुच्चय का विधान किया जा रहा है, एक एक की निंदा और दोनों सफल होने के कारण त्याग में भी अभिप्राय नहीं है, क्योंकि कर्म और उपासना को छोड़ देगा यदि अधिकारी और ज्ञान की साधना भी नहीं कर पाएगा तो फिर तो दोनों से भी भ्रष्ट हो जाएगा, उभयतः भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए दशम जो मंत्र है इसमें अब जिसकी विवक्षा है, जिसको बताना अभीष्ट है, उस कर्म और उपासना के समुच्चय अनुष्ठान को बताया जा रहा है। इस दशम मंत्र का उच्चारण किया जाए, ऐसे दशम मंत्र में तो अलग अलग फल मात्र बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अनुष्ठान तो बताया जाएगा समुच्चय ग्यारहवें मंत्र में। इन दोनों का त्याग भी अभीष्ट नहीं है क्योंकि दोनों सफल हैं, इसे दसवें मंत्र में बताया गया। दसवें मंत्र का उच्चारण किया जाए कि अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति सुश्रूमधीराणाम् येनस्तद विचचक्षिरे। तो किसी ने कहा कि जब दोनों भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को ही पुष्ट कर रहे हैं, केवल उपासना भी और केवल कर्म भी, तो दोनों को भी छोड़ दिया जाए, तो श्रुति कहती है नहीं, इनको छोड़ना भी नहीं है क्योंकि इनका फल भी शास्त्र बता रहा है। कहते हैं कि शिष्ट लोग, शिष्ट कहा जाता है उनको जो वेदार्थ के विषय में संशय और भ्रांति से रहित हैं, वेदों ने बताए हुए साध्य और साधन का जिनको दृढ़ निश्चय है, उनको कहा जाता है शिष्ट लोग, धीर लोग, बुद्धिमान लोग। वेदों के तात्पर्य का दृढ़ निश्चय जिनको है, ऐसे जो धीर लोग, बुद्धिमान लोग, वे कहते हैं कि विद्या से यानी उपासना से अन्य फल की प्राप्ति होती है। का मतलब विद्या देवलोक, इस श्रुति के आधार पर बताते हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है विद्या से यानी उपासना से, और अविद्या यानी कर्मानुष्ठान से अन्य फल की प्राप्ति होती है यानी कर्मणा पितृलोक। इस शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये ऐसा हमने धीर लोगों का यानी शिष्ट लोगों का वचन सुना है, जिन्होंने हमारे हित संपादन के उद्देश्य से हमारे सामने वेद की व्याख्या की है, ऐसे महापुरुषों का। ये नस्पद वीच चक्षीर है, यानी जिन महापुरुषों ने धीर लोगों ने न यानी हमारे लिए वेद का अभिप्राय बताया, वे हमें ये समझाए हैं कि ये दोनों अलग अलग फल वाले हैं, कर्म और उपासना। इसलिए सफल होने कारण छोड़ भी नहीं सकते और एक एक की निंदा भी है, तो इसका अभिप्राय है कि अधिकारी इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करें। साथ साथ अनुष्ठान बताने वाले 11वें मंत्र पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
महाराज जी के चरण में प्रणाम। आज 20 नवंबर मंगलवार प्रेमपुरी विसामो के अंतर्गत आज सायं श्रीमती इलाबेन शाह के द्वारा रास गरबा नृत्य के विशेष कार्यक्रम का आनंद आज सायं 5 से 7:30 के दरमियान होगा। प्रेमपुरी महिला मंडल द्वारा तुलसी विवाह कल देवी दिवाली के उपलक्ष्य में पूजन अर्चन का विशेष कार्यक्रम सायं 4:30 से 6 के दरमियान होगा। आज के श्रेय समिति के यजमान है श्री गजानन त्रिम्बकलाल मामोत्रा की ओर से श्रीमती माणिकबाई कल्याण जी मामोत्रा की स्मृति में, श्रीमती सीता सेटलर की ओर से श्री राघवैया सेटलर की स्मृति में, श्री वसंत कुमार सिंह की ओर से श्री सुमन सिंह की स्मृति में, श्रीमती वासंतीबेन तिकमदास भाटिया की ओर से श्री तिकमदास हिरानंद उदेशी की स्मृति में। आप या आपके परिवार के सदस्य उपस्थित हो तो महाराज जी से आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठ होगा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।